प्यारे बाबा जानी, जैसे के मुस्कुराना सुन्नत है और आदमी तकरीबन वैसे ही सारा दिन मुस्कुराता रहता है, तो क्या पहले नियत करे फिर मुस्कुराए, या सुबह को ही ये एक ही नियत करे कि मैं आज सारा दिन सुन्नत की नियत से मुस्कुराऊंगा, इसका कितना सवाब मिलेगा? बाबा आपकी मुस्कुराहट तो मदीना मदीना है। बाबा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब मुस्कुराते हो तो हमारी आंखों से पानी आ जाता है, ये क्यों होता है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्कुराना सुन्नत है, लेकिन मुस्कुराने का मौका महल होता है। आप जा रहे कि किसी ने बताया कि वो बेचारा बहुत गमजदा है, बोला कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, और आप मुस्कुराना शुरू कर देंगे तो अब उसको जाहिर है बेचारे को मजा नहीं आएगा, ईजा होगी उसको। ये मुस्कुराने का मौका नहीं है। या कोई बोले कि बड़ा सख्त सर में दर्द हो रहा है, सर फटा जा रहा है, आप मुस्कुराए जा रहे हैं, तो जाहिर ये भी मुस्कुराने का मौका नहीं है। तो मुस्कुराने का भी मौका महल होता है, बल्कि जो परेशान हाल मिले ना, इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह अलवाली ने यह मशवरा दिया है कि उस वक्त अपने चेहरे पर भी गम के आसार जाहिर करें, ताकि इससे भी उसकी दिलजोई होगी। उस वक्त हम मुस्कुराएंगे तो तरकीब बनेगी नहीं। और वो खुशखबरी सुनाए कि मेरा मदीने का वीजा लग गया, तो बेशक मुस्कुराए, खुशी की खुशखबरी है नहीं, तो मौका महल हो। तेरा गुफ्तगू में मुस्कुराना ये भी सुनना था। तो जहर अब जैसी गुफ्तगू, वही अब सदमे की गुफ्तगू है, ताजियत की गुफ्तगू है, तो इसमें थोड़ी मुस्कुराएंगे हम, तो उसको तो बुरा लगेगा ना सामने वाले को। तो अब सारे दिन में सुबह नियत कर ली कि अब सारा दिन मुस्कुराता रहूंगा सुन्नत के मुताबिक, तो इसका सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसमें मुझे पता नहीं है। इसका यह पता है कि जब भी कोई अमल कर रहा हो और उसमें गुंजाइश हो, मुबाह अमल हो, नाजायज अमल पर तो गुंजाइश ही नहीं है अच्छी नीयत की, जो अमल जायज है उसमें यह गुंजाइश है ना, जायज अमल में, तो अब उस वक्त कोई ऐसी नीयत उसकी बन रही है तो उस वक्त वो नियत कर लेता है। तो यानी ये अल्फाज कहने की शर्त नहीं है उसमें, तो बस वो जहन में ये नियत हो कि मैं ये काम अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं, तो यही नियत होगी और सवाब उसको मिल जाएगा। जैसे इमामा बांध रहा और बांधते बांधते नियत है कि ये सुन्नत है इसलिए बांध रहा हूं अल्लाह की रजा के लिए, तो ये भी इसकी एक नियत हो गई। चप्पल पहनते पहनते ये जहन में कि चूंकि सीधे पांव से पहल करना, पहला चप्पल पहनना, सीधे पांव में सीधा चप्पल पहनना ये सुन्नत है, तो इसलिए मैं ये सीधा पांव इसमें दाखिल कर रहा हूं, तो ये सवाब मिलेगा। इसलिए बिस्मिल्लाह पढ़ रहा हूं कि अल्लाह राजी हो जाए, तो अब इसका सवाब मिल जाएगा, ये नियत हो गई। तो इसी तरह मुस्कुराते वक्त ये जहन में हो कि मैं सुन्नत है इसलिए मुस्कुरा रहा हूं अल्लाह की रजा के लिए, तो ये भी नियत हो गई। अब बगैर नियत के मुस्कुराएगा तो सवाब नहीं मिलेगा। जैसे सलाम का भी बाहर शरीयत में सबसे पहले नियत लिखी हुई है, मसले जहां शुरू हुए कि सलाम करते वक्त नियत हो, नियत नहीं होगी तो सवाब नहीं मिलता ना। हम आमतौर पर आदतन सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, हमको नियत का नहीं होश होता, तो अभी मुबाह है, ठीक है, गुनाह नहीं है, सवाब नहीं मिलेगा। सवाब इसी सूरत में मिलेगा कि हमारे जहन में ये बात हो, अस्सलाम वालेकुम ये कहने से कहते वक्त ये नियत जहन में हो कि तेरी जान, तेरी इज्जत, तेरा माल मुझ पर हराम, अस्सलाम वालेकुम। ये फौरन अब अगर अपनी आदत हो जाएगी ना, तो ये मैंने क्या आपको वो बाहर शरीयत की नियत के अल्फाज को भी रिड्यूस कर दिया है। अब जाहिर है वही अल्फाज रटना जरूरी तो नहीं है ना, मफहूम वही मतलब आ गया, तेरी जान, तेरा माल, तेरी इज्जत मुझ पर हराम है, अस्सलाम वालेकुम। तो ये जब आदत पड़ जाएगी ना, इसी तरह वालेकुम अस्सलाम कहते हुए भी यही नियत हो, वो लिखी नहीं है लेकिन समझ में आता है कि ये नियत हो, साथ में और नियतें समझ में आता है, बढ़ा भी सकता है कि इसलिए सलाम कर रहा हूं कि सुन्नत है, इसलिए जवाब दे रहा हूं कि वाजिब है, तो इसका भी सुन्नत और वाजिब का सवाब पाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। तो अब ये सब जहन बनाने से होगा, इसका बार बार प्रैक्टिकल करने से होगा, बार बार प्रैक्टिस करने से होगा, भूल जाता है। मैं कितनी बार इमामा बांधता हूं खोलता हूं, भूल जाता हूं, इमामा बांध लेता फिर याद आता है, तो मेरे को मजा नहीं आता, मैं यार मैं क्या करूं, फिर कभी सुस्ती भी हो जाती है, और अक्सर ये होता है कि मैं दोबारा खोलता हूं इसको, फिर वो नियत करता हूं कि इत्तेबाए सुन्नत में इमामा बांधूंगा, खड़े खड़े काबे की तरफ मुंह करके इमामा बांधूंगा, और वुजू करके बांधा तो ये भी नियत करता हूं कि नमाज के लिए जीनत हासिल कर रहा हूं। तो ये तीन चार नियतें मैं कर लेता हूं, फिर याद आता है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर बांधूंगा तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता हूं, बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं बारह नियत नहीं होती जहन में। इसी तरह लिबास पहनते वक्त हम सीधे हाथ से ही पहनते हैं लेकिन वो नियत करनी होती है, कभी कभी ये कुर्ता भी पहन के उतार देता हूं, भूल भुलक्कड़ बहुत हूं, तो फिर नियत करता हूं उतार के कि जैसे बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा सीधे हाथ से पहनना शुरू करूंगा, नमाज के लिए जीनत हासिल करूंगा, और कुर्ता पहनने के बाद लिबास पहनने की दुआ पढ़ूंगा, यही इमामा पहनकर भी दुआ, तो वो दुआ भी अपने को याद होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़ाक़नी है मिन ग़ैरि हौलिम मिन्नी वला कुव्वा, ये इसकी दुआ है। तो इसमें गालिबन मग़फ़िरत की बिशारत है या गुनाह माफ होने की बिशारत है जो लिबास पहन कर ये दुआ पढ़े। तो इस तरह नियतों की थोड़ी थोड़ी आदत बनाएंगे ना तो इंशाअल्लाह नियत हो जाएगी। अब जैसे कि मैं आया यहां मैंने हमदो सलात पढ़ी, तो मेरी कोशिश ये होती कि मैं सीढ़ी चढ़ता हूं, तो सीढ़ी चढ़ते हुए अल्लाह अकबर पढ़ूंगा, भूल गया तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते याद आ जाते तो मैं अल्लाह अकबर पढ़ रहा हूं अल्लाह की रिजा के लिए। काबे की तरफ पीठ करके मैं बैठूंगा क्योंकि मैं सिखाऊंगा, सिखाने वाले को काबे की तरफ पीठ करके बैठना सुन्नत है। चमड़े पर बकरे के चमड़े पर बैठूंगा इनकी सारी हासिल करने के लिए, हमदो सलात पढ़ूंगा जो हमारे यहाँ पढ़ी जाती है, दुरूद सलाम के चार सीगे, दुरूद शरीफ की फजीलत पढ़ूंगा, सल्लू अलल हबीब कहकर दुरूद पढ़ाऊंगा। इस तरह की चंद नियतें मैं चलते चलते कर लेता हूँ, फिर मैं हमदो सलात वगैरह शुरू करता हूँ, फिर ये आपको नियत है। इसमें फिर याद आ जाता तो नियत करता हूँ कि नियतें करवाऊंगा, नियतें करवाना भी सवाब है ना, तो इसकी भी नियत होनी चाहिए। तो जितनी नियतें ज्यादा होंगी तो सवाब ज्यादा होगा, जितना शहद डालेंगे इतना मीठा होगा। अब कुछ नियतें नहीं होंगी तो कुछ सवाब नहीं मिलेगा। वुजू पानी बह गया तो हम हनफियों के नजदीक तो वुजू हो जाता है, आजा वुजू पर पानी बह गया तो, लेकिन नियत नहीं होगी तो सवाब वुजू का नहीं मिलेगा। तो इसलिए नियत करनी चाहिए कि हुक्म इलाही पर अमल करते हुए पाकी हासिल करने के लिए वुजू करता हूं। इसको रट लो ना, किसी को याद तो बहुत सो होगी, मैं बताता रहता हूं किस किस को याद है। सुभान अल्लाह, अच्छा इन अल्फाज में याद नहीं है, ठीक है ना, अक्सरियत को नहीं है, कोई बात नहीं। जब वुजू करने बैठा तो जहन में हो गया मैं वुजू कर रहा हूं, साबुन से हाथ मुंह नहीं धो रहा, जैसे हाथ मुंह धोते ना, मैं वुजू कर रहा हूं, तो ये भी एक नियत ही है ना कि मैं वुजू कर रहा हूं, समझ में ये आता कि ये नियत ही है। तो ये नियत अगर इस तरह हो जाए ना, बाहर शरीत में इसी अंदाज में लिखा हो तकरीबन ये अल्फाज है, हुक्म इलाही बजा लाते हुए पाकी हासिल करने के लिए वुजू करता हूं। अब ना आपके पास पेड है, ना कलम है, ना लिखने का जज्बा है, जबकि वो ये हदीस पाक है सरकार की, तय्यदुल इल्मा बिल किताबा, इल्म को लिख कर कैद कर लिया करो। तो इस हदीस पर अमल करने की नीयत से आप लिखना भी, लिखने का जहन बनाए तो आपको काम आता रहेगा, वरना हफ्जा तो आपको पता है कि किसका कितना मजबूत होता है, सब अपने आप को जानते हैं, इधर से सुनी इधर से निकाल दी, अंदर उतरती नहीं, टर्न करती नहीं दिल की तरफ, याद रहती नहीं, ना दिमाग में चढ़ती है, वन वे ट्रैफिक है, कान से गई निकल गई सीधी तीर के माफिक, पता भी नहीं है। तो लिख पेड कलम रखा करो, लिख लिया करो। बयान में भी और मौके में भी लिखने की आदत डाले। कल आपने देखा होगा कि मैंने भी आयत लिखवाई थी, इस समय मैंने पढ़ी थी, तो ये कुरान से कुरान करीम से निकाल कर कन्फर्म करके इन्होंने लिख दिया मुझे। अब वो मुझे ऐसा लगता है कि याद हो गई, मैं सुनाता हूं इनको। फस्तबिकुल खैरात, नेकी में एक दूसरे से सबकत ले जाओ, कंपटीशन, نیکیوں میں کمپٹیشن ہو. کہ یہ 3 دن کے قافلے میں سفر کیا, میں انشاءاللہ 12 دن کے قافلے میں سفر کروں گا. تو وہ بولے میں انشاءاللہ 12ویں شریف کی نسبت سے 12 کے ساتھ ساتھ مزید اس میں کتنے جمع کروں تو 30 ہوں گے 18. ہاں میں 12 کے ساتھ 18 مزید جمع کر کے 30 دن کے قافلے میں سفر کروں گا. تو تیسرا کمپٹیشن کرتے ہوئے بولے میں انشاءاللہ 12 ماہ کے لیے, تو وہ بولے میں 25 ماہ کے لیے. تو وہ پھر بالکل کمپلیٹ کر لے کے وقف مدینہ ساری زندگی کے لیے. تو یہ کمپٹیشن کرو یار, فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں. ہم لوگ تو یار بالکل پیچھے ہی پیچھے نیکیوں میں, گناہوں میں معاذ اللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے لیتے ہیں, برائیوں میں فضول بہت باتوں میں کمپٹیشن کرتے کیا کرتے ہیں. میں اتنی روٹیاں کھاتا ہوں رولا, میں اتنی روٹیاں اور اتنے انڈے کھاتا ہوں, کھاتے ہیں نا, اور پھر بیٹھتے ہیں پھر جوا کھیلتے ہیں. کیسا جوا کھیلتے ہیں پتا ہے, وہ اس طرح کے چلو دونوں کھاتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ کھائے, جو سب سے زیادہ کم کھائے گا وہ سب کا بل پیمنٹ کرے گا. جوا ہوا نہیں, وہ سب کا مال مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کو دینا پڑا, نقصان اٹھانا پڑا. جوا ہی کی ایک صورت سامنے آ رہی ہے. ایسا کرتے ہیں نا دوستوں میں, میں 10 روٹیاں کھاؤں گا, میں 12 روٹیاں کھاؤں گا, 15 روٹیاں, چلو کھاتے ہیں. پھر وہ کھائیں گے اور پیٹ کا ستیہ ناش کریں گے, صحت کا بیڑا غرق کریں گے, لیکن یہ کھائیں گے اور کھا کے پھر وہ پیسہ جو ہارے گا وہ دے گا. نعوذ باللہ. تو یہ اس میں سبقت کرتے ہیں جو گناہ کرنے کے جذبے والے ہوتے ہیں, اور ہم نیکیوں کی وہ کریں کمپٹیشن. حریفائی, گجراتی میں حریفائی بولتے ہیں, حریفائی, اس کی حریفائی کریں. اور اردو میں مسابقت, عربی میں مسابقت, اردو میں بھی غالباً یہی استعمال ہوتا ہے مسابقت, یا اور کچھ بھی بولتے ہوں گے, ریس, مقابلہ. ہاں یہ بھی مقابلہ بھی کہلاتا ہے, نعت خوانی کا مقابلہ, حسن قراءت کا مقابلہ, یہ کرتے ہیں لوگ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. یہ سب بتا رہے ہیں کہ جیسے مسکرانے کی نیت کر لی کہ سارا دن مسکراؤں گا, تو اس میں اس کو اس نیت کا سارے دن کا ثواب مل جائے گا عمل کا. یعنی عمل تو جب جب مسکرائے گا تب اس کا ثواب ملے گا, اور اس کی نیت تو دوبارہ کرنی پڑے گی ایسا لگتا ہے اس وقت, ٹھیک ہے نا. باقی اس نیت کا ثواب, جیسے کہ ہم نے وہ ایک نیت کی ترکیب بنائی ہے, یعنی مکتبۃ المدینہ نے کارڈ چھاپا ہے جو میں نے لگا رکھا تھا, وہ یہ اس طرف تھا. یہ نیت جو ہے میں نے کارڈ لگا ہے نیت کا, تو اس میں لکھا ہے کہ ہر صبح یہ نیت کر لیجئے, آج کا دن آنکھ کان زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ.
باپا وہ سوال میں یہ بھی تھا کہ وہ آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے,
اب یہ سوال کہ میری آنکھوں میں کیوں پانی آ جاتا ہے, اس کا علاج جواب میرے ذمے یا ان کے ذمے, کون دے گا اس کا جواب؟ میں دوں. آپ غور فرمائیں نا کہ روئیں آپ اور جواب مجھے دینا پڑے, آپ جواب دیں کہ کیوں روتے ہیں بھائی, یا کوئی جواب دے جو یہاں ہے اس کو رونا آیا ہو تو, کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر کے بھائی کیوں روتے ہو آپ؟
بابا یہاں پر تو یہ عرض کرنا چاہیں, عشق کے چلے بازی لے گئے.
یہ بات تو سب نہیں سمجھیں گے, کیوں روتا ہے اس کو کلیئر کرو آپ, کیوں روتا ہے؟ دوسرے کو ہنستا دیکھ کر آپ کو بھی مسکرانا چاہیے, مسکراہٹ دل چہرے پہ, اس کے بجائے آپ رونا شروع کر دیتے وائی.
تو آپ ہی بتائیں گے بابا,
میں کیسے بتاؤں؟
پوچھیے آپ سے رہے, اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں آپ سے وہ, کہ ان کو پتا ہے کہ آپ بتائیں گے بابا.
والحب يعترض اللذات بالألم, اور محبت لذتوں کو درد سے بدل دیتی ہے. تو جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس نے زن ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کو دیکھ کر یا اس کی مخصوص کیفیت کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے, اس سے ملاقات کر کے رونا آ جاتا ہے, اس سے گلے مل کر رونا آ جاتا ہے. خالی وہ اپنی طرف دیکھے تو اس کا دیکھنا رونے کا سبب بن جاتا ہے. جس سے محبت کا غلبہ ہو, کہ محبت لذتوں کو درد سے بدل دیتی ہے. یہ میں نے پڑھی, آیت نہیں تھی, حدیث بھی نہیں تھی, بلکہ قصیدہ بردہ شریف کے شعر کا ایک مصرع تھا جس میں نا وہ نعم سرا طیف من احوا فارقنی, جی ہاں مجھے کسی کی یاد آ گئی, یا کسی سے مراد سونے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجھے یاد آ گئی, جس کی وجہ سے مجھ پر رقت طاری ہو گئی ہے اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اس لیے کہ والحب یعترض اللذات بالالم, کہ محبت لذتوں کو درد سے, غم سے, الم سے بدل دیتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.